क्या आपका कभी भी ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो इतने धोखेबाज हैं कि उनसे कोई आशा रखना ही व्यर्थ है, भले ही उनके धोखे और बेईमानी उन्हें क्षणिक लाभ पहुंचा सकते हैं, परंतु अंत में अक्सर ये उन्हें और भी बदतर बना देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसे लोग भी परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं हैं। जब कभी वह उनका विशेष रूप से उपयोग करना चाहे, वह उन तक पहुंच जाता है। परमेश्वर उनके जीवनों में कठिनाइयों को लाने के द्वारा उन्हें एक नए मनुष्य के रूप में बदलता है, जो दीन हो और उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। ज्यादातर लोग जिन्हें परमेश्वर ऐसे बुलाता है, वे अंत में दूसरों के लिए दीनता और विश्वास में आदर्श और उदाहरण का कारण ठहरते हैं। यह पाठ पेंटेट्यूक के उस हिस्से पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है जो बाइबल के सबसे धोखेबाज पुरुषों में से एक का जिक्र करता है, कुलपिता याकूब। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 25 पद 19 से अध्याय 37 पद 1 का यह भाग न केवल यह उजागर करता है कि याकूब कितना धोखेबाज था, लेकिन यह भी कि कैसे परमेश्वर ने उसे दीन किया और उसे इस्राएल के उन कुल पिता में से एक बनाया जिनकी सर्वाधिक सराहना की गई हो। दूसरे पाठों में हमने देखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग अध्याय 1 पद 1 से अध्याय 11 पद 9 में अति प्राचीन इतिहास है। यहां मूसा ने समझाया कि प्रतिज्ञा के देश के लिए इसराइल की बुलाहट किस तरह से संसार के इतिहास के प्रारंभिक चरणों पर आधारित थी। दूसरे भाग अध्याय 11 पद 10 से अध्याय 37 पद 1 में आरंभ में हुए सभी कुलपिता के इतिहास को शामिल किया गया है। इस भाग में मूसा ने स्पष्ट किया कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन की पृष्ठभूमि की तुलना में प्रतिज्ञा किए हुए देश की यात्रा को कैसे देखना था। तीसरे भाग अध्याय 37 पद 2 से अध्याय 50 पद 26 में बाद में आने वाले कुलपिता का इतिहास है। इन पदों में इसराइल जब प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहा था, तब उनकी जातियों के बीच उठे मुद्दों को संबोधित करने के लिए मूसा ने यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी बताई। कुलपिता याकूब का इतिहास दूसरे भाग का हिस्सा है। वह प्रारंभिक कुलपिता का इतिहास जो इसराइल के तीन प्रसिद्ध कुलपिता के बारे में बात करता है, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब। इसहाक के जीवन की घटनाओं को अध्याय 11 पद 10 से अध्याय 25 पद 18 में अब्राहम के रिकॉर्ड के साथ और अध्याय 25 पद 19 से अध्याय 37 पद 1 में याकूब के रिकॉर्ड के साथ भी जोड़ा गया है। इसलिए इस पाठ में हम इस भाग के दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अर्थात याकूब का जीवन। कुलपिता याकूब पर हमारा पाठ दो मुख्य भागों में विभाजित होगा। सबसे पहले हम उत्पत्ति के इस हिस्से की संरचना और विषय वस्तु की जांच करेंगे। फिर हम प्रमुख विषयों की ओर देखेंगे जिन पर मूसा ने अपने मूल दर्शकों को ध्यान में रखते हुए जोर दिया और कैसे ये विषय आधुनिक मसीहों पर लागू होते हैं। आइए याकूब की कहानी की संरचना और उसके विषय वस्तु के साथ प्रारंभ करते हैं। बाइबल के अधिकांश छात्र याकूब के जीवन की घटनाओं से परिचित हैं, लेकिन हमारे पाठ में इस बिंदु पर हम यह देखना चाहते हैं कि कैसे मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक में इन घटनाओं के वृत्तांतों को व्यवस्थित किया। ध्यान में रखें कि जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें दो सवाल पूछना चाहिए, पहला कि वे क्या कहते हैं और दूसरा कि वे इसे कैसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में, हर अध्याय में लिखी बात और उसकी संरचना कैसे एक साथ काम करती हैं। इस रिश्ते को समझने के द्वारा हमें उन बाइबल के लेखकों के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है जो उनके मूल श्रोताओं के लिए बनाए गए थे, और यह भी कि उनके लेख को हमारी आधुनिक दुनिया में हमें कैसे लागू करना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 19 से अध्याय 37 पद 1 जैसे लंबे एवं जटिल पवित्र शास्त्र के हिस्से की रूपरेखा बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हमारे उद्देश्यों को देखते हुए हम याकूब के जीवन की कहानी के 7 प्रमुख भागों की पहचान करेंगे। पहला भाग वह है जिसे हम उत्पत्ति अध्याय 25 पद 19 से 34 में संघर्ष की शुरुआत कह सकते हैं। यह याकूब और एसाव के बीच नाटकीय रूप से आए संघर्ष को बताती है और बाद में उनसे जो जातियां निकली। यह संघर्ष याकूब के जीवन भर पूरी तीव्रता से बढ़ता और घटता रहता है। इस प्रथम भाग के अंत में याकूब और एसाव से ध्यान हटाकर उनके पिता इसहाक पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा उसे एक नायक के रूप में चिन्हित किया गया है। दूसरा भाग अध्याय 26 पद 1 से 33 में इसहाक और पलिश्तियों के बीच शांतिपूर्ण व्यवहारों की ओर बढ़ता है। यह भाग एसाव और याकूब को मुख्य पात्रों के रूप में वापस लाने के साथ समाप्त होता है। तीसरा भाग अध्याय 26 पद 34 से अध्याय 28 पद 22 में याकूब और एसाव की शत्रुतापूर्ण अलगाव के बारे में बताता है। यह भाग याकूब का प्रतिज्ञा किए हुए देश से बाहर निकलने और लाबान और अपने रिश्तेदारों के पास जाने को दर्शाते हुए समाप्त होता है। अध्याय 29 पद 1 से अध्याय 31 पद 55 में चौथा भाग लाबान के साथ याकूब के बिताए गए समय का वर्णन करता है। जब याकूब प्रतिज्ञा किए हुए देश को लौटता है तो इस भाग का अंत होता है। पांचवा भाग याकूब और एसाव के शांतिपूर्ण अलगाव को बताता है। जब अध्याय 32 पद 1 से अध्याय 33 पद 17 में याकूब प्रतिज्ञा किए हुए देश को लौटता है, फिर यह भाग एसाव से हटकर कनानियों के साथ याकूब के संघर्षों पर आता है। अध्याय 33 पद 18 से अध्याय 35 पद 15 में छठा भाग याकूब और कनानियों के आमने सामने आने पर ध्यान केंद्रित करता है और अंत में यह ध्यान यहां से हटकर याकूब के वंश की ओर जाता है। अंत में याकूब के जीवन का 7वें भाग अध्याय 35 पद 16 से अध्याय 37 पद 1 में भाइयों के मध्य चले आ रहे लंबे संघर्ष की समाप्ति का वर्णन है। कई टीकाकारों ने ध्यान दिया है कि याकूब के जीवन की यह बुनियादी रूपरेखा एक बड़े पैमाने वाले व्यत्यासिका को बनाती है। एक साहित्यिक संरचना जिसमें बीच वाले भाग से पहले और उसके बाद का भाग एक दूसरे के समानांतर होता है या एक दूसरे को संतुलित करता है। जब कभी आप किसी भाग या पुराने नियम के हिस्से पर चर्चा करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि दुर्लभ अपवाद के अलावा बाइबल के लेखकों ने अपनी कहानियों या अपनी कविताओं और उन्हीं के समान किसी भी अन्य लेख को किसी रूपरेखा को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था। जैसे कि ऐसा नहीं है कि लेखक कहे अब मैं भाग 1 पर हूं, अब मैं भाग 2 पर हूं, अब मैं भाग 3 पर हूं। इसके बजाय हम जो बात कर रहे हैं वह यह है कि व्याख्याकार उन ग्रंथों को देख रहे हैं जो लिखे गए थे और ऐसे पैटर्न की खोज कर रहे हैं जिनकी पहचान की जा सके, जिसका अर्थ है कि संरचना और तार्किक संबंधों का विश्लेषण करने के लिए हर एक रूपरेखा कुछ मानदंडों का उपयोग कर रही है और जिस मानदंड का आप उपयोग करेंगे उसके आधार पर आप भिन्न भिन्न रूपरेखा बनाएंगे। अच्छा, तो एक तरीका जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वह है पहले भागों और बाद आने वाले भागों के बीच संतुलन या प्रतिध्वनि या प्रतिबिंब या समानताएं बनाना। लेकिन जब आप और भी विस्तृत समानताएं पाते हैं, जैसे कि याकूब के मामले में पहले भाग और पिछले भाग के बीच देखा जा सकता है, तब आप इस बिंदु पर आते हैं जहां यदि आपके पास पर्याप्त समानताएं हैं तो आप वास्तव में इसे सुविचारित व्यत्यासिका कह सकते हैं, जहां लेखक इस संदर्भ में सोच रहा है कि मैंने यह किया है, मैंने यह किया है, मैंने यह पहले भाग में किया, अब मैं वह करने जा रहा हूं जिनका थोड़ा संबंध पहले के भागों से है, और उन सहसंबंधों के कारण जो उस प्रकार की संरचना में आते हैं आपके पास सहसंबंध बनाते हुए भागों की तुलना और विरोधाभास करने का मौका होता है। और जब याकूब की कहानी की बात होती है तो यह मूल्यवान बात है। याकूब के जीवन के शुरुआती हिस्से याकूब के जीवन के बाद के हिस्सों से सहसंबंधित हैं, और जब आप उन सहसंबंधों को देखते हैं जिनमें दोनों विरोधाभास और तुलनाएं शामिल हैं, जब आप उन दोनों को एक साथ देखते हैं और वे इन विभिन्न भागों के बीच उठते हैं, तब आपके पास यह देखने का अवसर होता है कि एक लेखक के रूप में मूसा उन दोनों भागों पर जोर दे रहा है। तुलनाएं और विरोधाभास किसी व्यत्यासिका के महत्व को समझने की यही कुंजी है। जैसा कि हमने अभी देखा है, याकूब की कहानी में पहला भाग दो भाइयों याकूब और एसाव के बीच के संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। इस भाग को सातवें और अंतिम खंड में उनके संघर्ष की समाप्ति को दर्शाने के द्वारा संतुलित किया गया है। दोनों भाग न केवल भाइयों के बीच संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन उन देशों के बारे में भी जो उनसे निकले थे। दूसरा भाग इसहाक और पलिश्तियों के साथ उसके संपर्कों पर केंद्रित है। यह छठे भाग के अनुरूप है, जहां हम याकूब और कनानियों के साथ उसके संपर्कों को देखते हैं। ये भाग एक दूसरे को संतुलित करते हैं, क्योंकि वे दोनों उन मुठभेड़ों का वर्णन करते हैं जो कि प्रतिज्ञा किए हुए देश में कुलपिता और अन्य समूहों के बीच घटित हुआ था। तीसरा भाग याकूब और एसाव की शत्रुतापूर्ण अलगाव का वर्णन करता है। यह पांचवें भाग के साथ संतुलित होता है, जहां हम याकूब और एसाव के शांतिपूर्ण अलगाव के बारे में पढ़ते हैं। दोनों भाग उस समय के परिवेश और उन गतिशीलताओं पर केंद्रित हैं जब भाइयों ने अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। और अंत में चौथा भाग लाबान के साथ याकूब के समय का वर्णन करता है। यह भाग व्यत्यासिका की संरचना के केंद्र या काज के रूप में अकेले खड़ा है, जैसे कि यह याकूब की कहानी के नाटक में एक प्रमुख बिंदु को बनाता है। इस व्यापक सममित डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक युग्मित भाग की तुलना और विरोधाभास के द्वारा मूसा की सामग्री की जांच करेंगे। सुविधा के लिए हम दो सबसे बाहरी भागों के साथ शुरू करेंगे और केंद्रीय भाग की ओर अपने कार्यों को करेंगे। आइए उत्पत्ति अध्याय 25 पद 19 से 34 में भाइयों के संघर्ष की शुरुआत के साथ आरंभ करते हैं। इस भाग में तीन साधारण वृतांत शामिल हैं जो बताते हैं कि भाइयों के बीच संघर्ष किस तरह शुरू हुआ। पहला वृतांत अध्याय 5 पद 19 से 23 में जुड़वां भाइयों के जन्म से पहले घटित होता है। यह बताता है कि जुड़वां भाई अपनी मां के गर्भ में लड़ते थे। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 23 को सुनिए, जहां परमेश्वर इनके जन्म से पूर्व ही इस संघर्ष के बारे में रिबका को बताता है। तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जैसा कि हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि याकूब और एसाव के बीच का संघर्ष भाइयों के बीच आमतौर पर होने वाले व्यक्तिगत संघर्ष से कहीं बढ़कर था। यह दो जातियों या दो राज्य के लोगों के बीच होने वाले संघर्ष का पूर्वानुमान था। तो परमेश्वर के मन में कौन से दो राष्ट्र थे? इस खंड के दूसरे और तीसरे भाग में हमको इसका उत्तर मिलेगा। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 24 से 26 में दूसरा वृतांत जन्म के समय भाइयों के संघर्ष के बारे में हमें बताता है। यह छोटा अध्याय उन दो राष्ट्रों की पहली पहचान के रूप में हमारे सामने आता है जिसका जिक्र आरंभ में किया गया था। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 25 पहले जन्मे बच्चे एसाव का वर्णन जन्म के समय लाल होने के रूप में करता है। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद लाल किया गया वह एदमोनी है। यह शब्दावली चतुराई से खेले गए शब्दों के खेल को दिखाती है क्योंकि यह शब्द एदोम या एदोम के रूप में इब्रानी शब्दों के एक ही परिवार से निकला है। इसने संकेत दिया है कि एसाव एदोम राष्ट्र का पूर्वज है। हम उत्पत्ति अध्याय 25 पद 26 में दूसरे राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं जहां दूसरे बेटे को याकूब कहा गया है। जाहिर है याकूब इसराइल राष्ट्र का सुविख्यात पिता था। तीसरा वृतांत अध्याय 25 पद 27 से 34 में युवा वयस्कों के रूप में याकूब और एसाव के बीच पाई जाने वाली प्रतिद्वंद्विता को हम देख सकते हैं। इन पदों में याकूब ने एसाव को लाल दाल या एदोम का प्रलोभन देकर पहलौठेपन का अधिकार बेचने के लिए लुभाया था। यह इब्रानी शब्द जन्म के समय एसाव के लाल रंग को पुनः यहां दोहराता है और उत्पत्ति अध्याय 25 पद 30 स्पष्ट रूप से ध्यान देता है कि यही कारण है कि एसाव को एदोम भी कहा जाता था। जैसा कि हमने अभी देखा, शुरू से ही मूसा ने अपनी कहानी की ओर एक महत्वपूर्ण अभिविन्यास को अपने श्रोताओं को प्रदान किया था। उसके श्रोता जानने वाले थे कि याकूब और उसके भाई एसाव के बीच क्या हुआ था, लेकिन यह संघर्ष सिर्फ दो भाइयों के बीच होने वाले संघर्ष से कुछ ज्यादा ही था। ये दोनों भाई दो राष्ट्रों इसराइल और एदोम के मुखिया थे और इस तरह से उनके व्यक्तिगत संघर्ष इन दोनों राष्ट्रों में उनके वंशजों के बीच संघर्ष के पूर्वाभास थे। जब हम कूटनीतिक संबंधों के बारे में सोचते हैं तो राजनीतिक परस्पर अच्छेद इसराइल और एदोम के बीच सीमा, यह एक ऐसा रिश्ता है जो आनंददायक नहीं है। यहां तक कि जब वे रिबका के गर्भ में हैं तब भी वे लड़ रहे हैं और फिर एक बालक दूसरे की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। बेशक एसाव पहले बाहर आता है तो वह जेठा है, लेकिन याकूब उसके ठीक पीछे है और वह उसे हटाकर स्वयं आना चाहता है। जैसा उसका नाम है, याकूब चालाकी से दूसरे का स्थान लेने वाला, ठीक वह जो कपट से दूसरे का स्थान लेता है, और इस तरह यही उनकी पृष्ठभूमि है। और जब वे बहुत छोटे लड़के थे तो दोनों बहुत अलग स्वभाव वाले थे। याकूब को तंबू में रहना और खाना और घर में रहना पसंद है और एसाव शिकारी है, ठीक है ना? लेकिन याकूब वह चाहता है जो एसाव के पास है, जो कि पहलौठेपन का अधिकार। इसलिए वह उसके लिए खाना बनाता है। एसाव मैदान से घर आता है और वह बहुत भूखा है। तब वह अपने भाई के साथ यह मूर्खतापूर्ण सौदा करता है और याकूब एसाव से कहता है, तुम्हें पता है क्या, मैं अभी तुम्हारे लिए एक अच्छा भोजन तैयार करने जा रहा हूं, और क्या तुम मुझे उसके बदले अपने पहलौठेपन का अधिकार दे सकते हो? वह पुरुष इतना भूखा है, वह कहता है, जरूर मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर उसे पता चलता है कि क्या हुआ है और तब याकूब अपने पिता से आशीष लेना चाहता है और अपनी ही मां के साथ मिलकर याकूब एसाव होने का दिखावा करता है। और एसाव, जैसा कि आपको पता है, वह लंबा चौड़ा बालों वाला आदमी है, ठीक है ना? اور اس طرح یعقوب اپنی باہوں پر کچھ کھال لگاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے اور عیساو ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور پریوار کے کل پتا سے آشیرواد مانگتا ہے، اور اسحاق کہتا ہے ٹھیک ہے تم آشیرواد لے سکتے ہو۔ اس طرح سب طرح سے عیساو سے اس کا ادھیکار دھوکے سے چھینا جاتا ہے، اور اس لیے بے شک یہ گھٹنا آپس میں کٹوتا کو پیدا کرتی ہے، اور پھر یعقوب کو اس لیے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ اسے اپنے بھائی کے دوارا مارے جانے کا خطرہ تھا۔ یہ دونوں بھائیوں کے بیچ ایک اچھا رشتہ نہیں ہے، اور تب یہ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب وہ دونوں الگ الگ راشٹر بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کا اتہاس اس بات کو پرمانت کرتا ہے۔ پہلے بھاگ میں یعقوب، عیساو اور ان کے ونشجوں پر یہ دھیان کیندرن ساتویں یا انتیم بھاگ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ادھیائے 35 پد 16 سے ادھیائے 37 پد 1 میں بھائیوں کے سنگھرش کا انت۔ اس بھاگ میں موسا نے ایک بار پھر یعقوب اور عیساو اور ان دو راشٹروں پر دھیان کیندرت کیا ہے جس کا وے پرتنیدھتو کرتے ہیں۔ اس نے ایسا تین بھاگوں میں کیا تھا۔ سب سے پہلے اتپتی ادھیائے 35 پد 16 سے 26 میں اس نے یعقوب کے ونش کو درج کیا۔ یہ بھاگ سب وستار بتاتا ہے کہ کیسے یعقوب کے ونشجوں نے اسرائیل دیش کا گٹھن کیا۔ یہ بنیامین اور روبین کے بارے میں چھوٹی سی ٹپڑیوں کو شامل کرتا ہے، اور اسرائیل کے 12 گوتروں کے کل پتا کی ایک سوچی کے ساتھ سماپت ہوتا ہے۔ دوسرا، موسا اتپتی ادھیائے 35 پد 27 سے 29 میں اسحاق کی مرتیو پر یعقوب اور عیساو کے ویوہار کا ورنن کرتا ہے۔ چھوٹا سا یہ ادھیائے بتاتا ہے کہ دونوں عیساو اور یعقوب نے اسحاق کو دفنایا تھا۔ اس رپورٹ میں مارمکتا تب اسپشٹ ہوتی ہے جب ہم یاد کرتے ہیں کہ اتپتی ادھیائے 27 پد 41 میں عیساو نے اپنے پتا کی موت ہونے پر یعقوب کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس پرکاش میں اسحاق کی مرتیو کا ویورن سنکیت دیتا ہے کہ بھائیوں کے بیچ سنگھرش سماپت ہو گیا تھا۔ تیسرا، اتپتی ادھیائے 36 پد 1 سے 43 میں موسا نے عیساو کے ونشجوں کا ایک وسترت ویورن دیا۔ یہ ویورن دو ونشاولیوں کو جوڑتا ہے جو عیساو کے ونشجوں کی وبھن بھاگوں کی رپورٹ دیتا ہے۔ یہ بھاگ سیر کے کھیتر میں شاسن کرنے والے راجاؤں کے ساتھ سماپت ہوتا ہے۔ پھر موسا نے ادھیائے 37 پد 1 میں ایک انتم بات یہ کہی کہ یعقوب کنان دیش میں رہنا جاری رکھتا ہے۔ اس طرح سے عیساو کے ونش کو سماپت کر کے موسا نے یہ اسپشٹ کر دیا کہ یدپی یعقوب اور عیساو کے بیچ سنگھرش سماپت ہو چکا تھا، بھائی اب الگ ہو گئے تھے۔ یعقوب کے ونشج کنان میں رہتے تھے اور عیساو کے ونشج ایدوم میں رہتے تھے۔ یعقوب کے جیون کے پہلے اور آخری بھاگ کی سامگری کو دھیان میں رکھ کر آئیے ہم موسا کی کہانی کے کیندر کی اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے اور چھٹے بھاگ جو پرتیگیا کیے ہوئے دیش اور کل پتاؤں کے مدھیے آمنا سامنا ہونے سے سمبندھت ہیں۔ یہ بھاگ اتپتی ادھیائے 26 پد 1 سے 33 میں اسحاق اور پلشتیوں کے بیچ شانتیپورن سماگم ہونے، اور یعقوب اور کنانیوں کے بیچ اتپتی ادھیائے 33 پد 18 سے اتپتی ادھیائے 35 پد 15 میں شترتا پورن مٹبھیڑوں کے وپریت ہیں۔ ہم دوسرے بھاگ کے ساتھ شروع کریں گے جو کہ پلشتیوں کے ساتھ اسحاق اور اس کے مٹھ بھیڑوں کا ورنن کرتا ہے۔ اب کئی آلوچناتمک ویاکھیا کاروں نے ترک دیا ہے کہ اتپتی کا یہ ادھیائے ٹھیک جگہ پر نہیں ہے۔ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یعقوب کے بجائے اسحاق پر دھیان کیندرت کرتا ہے، اور شاید یہ سچ ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹنائیں یعقوب اور عیساو کے جنم سے پہلے ہوئی ہوں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے یعقوب کے جیون پر لکھا یہ بھاگ موسیٰ کے دھیان کیندرن کے لیے مہتوپورن ہے۔ یہ لیکھ دو گھٹناؤں میں وبھاجت ہوتی ہے جن میں کافی قریبی سمبندھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلا ورتانت ادھیائے 26 پد 1 سے 11 میں پلشتیوں اور اسحاق کے مدھے استھاپت ہوئی پرارمبھک شانتی کا ورنن کرتا ہے۔ ان پدوں میں اسحاق نے پلشتی راجا ابی میلک کو دھوکہ دیا، اس نے ایسا درشایا جس سے کہ راجا کو لگا کہ ربکا اس کی بہن تھی۔ اسحاق کے چھل کا پتہ لگنے پر ابی میلک نے اسحاق کو ربکا لوٹا دی، اس کے بعد اس نے اسحاق کو اس کھیتر میں رہنے کی انومتی دے دی اور انہیں کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچانے کے لیے اپنے لوگوں کو آدیش دیا۔ دوسرے ورتانت ادھیائے 26 پد 12 سے 33 میں پلشتیوں کے ساتھ اسحاق کی استھائی شانتی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس بھاگ میں پرمیشور نے اسحاق کو آشیش دی، لیکن اس کے پشوؤں کے کئی جھنڈوں کے کارن پلشتی لوگ اس سے ایرشیا کرنے لگے، اس لیے اسحاق نے ہنسا سے پرے رہتے ہوئے ایک کنویں سے دوسرے کنویں کو چلے جانے کو ہی بہتر سمجھا۔ اس گھٹنا کا انت تب ہوتا ہے جب ابی میلک نے اس بات کو گرہن کیا اسحاق پر پرمیشور کا آشیش مائے ہاتھ ہے، اور بیر شیبا میں دونوں نے آپس میں شانتی کی ایک سندھی بنائی۔ پلشتیوں کے ساتھ اسحاق کی شانتی کی یہ کہانی اس تتھی پر پرکاش ڈالتی ہے کہ اسحاق اور پھر اس کا پتر یعقوب ابراہم کے اترادھیکاری تھے۔ جب ہم ابراہم کے جیون کے ساتھ اس بھاگ میں لکھی باتوں کی تلنا کرتے ہیں تو ہمیں ابراہم کے جیون میں کئی سمانتائیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اتپتی ادھیائے 20 پد 1 سے 18 میں ابراہم نے بھی ایک پلشتی راجا کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا جس کا نام بھی ابی میلک تھا۔ اتپتی ادھیائے 21 پد 30 میں اور 34 میں ابراہم نے کنوؤں کو کھودا اور پلشتیوں کے بیچ رہا تھا۔ ادھیائے 21 پد 22 سے 34 میں ابراہم نے بھی بیرشیبا میں پلشتیوں کے ساتھ ایک سندھی کی تھی۔ سبھی سندھے کو ہٹانے کے لیے پرمیشور نے پلشتیوں کے ساتھ اسحاق کے شانتی پورن سمبندھ کو منظوری دی تھی۔ اس بات سے کسی بھی پرکار کے سندھے کو ہٹانے کے لیے موسیٰ نے ابراہم کے ساتھ ان تلناؤں کو درشایا تھا۔ اب آئیے پلشتیوں کے ساتھ اسحاق کے سمبندھوں سے ہٹ کر یعقوب کے جیون کے چھٹے بھاگ کی اور بڑھتے ہیں، اور ادھیائے 33 پد 18 سے ادھیائے 35 پد 15 میں دھیان کیندرت کرتے ہیں جہاں یعقوب کا سامنا کنانیوں سے ہوتا ہے۔ یعقوب اور کنانی لوگ، اتپتی ادھیائے 33 پد 18 سے ادھیائے 35 پد 15۔ کنانیوں کے ساتھ یعقوب کے سنگھرش میں بھی دو ورتانت ایسے ہیں جو قریبی سے جڑے ہیں۔ پہلا ورتانت ادھیائے 33 پد 18 سے ادھیائے 34 پد 31 میں شکیم میں یعقوب کے سنگھرش سے سمبندھت ہے۔ جب یعقوب کنانیوں کے بیچ رہتا تھا، حمور کے بیٹے شکیم نے یعقوب کی بیٹی دینا کا یون شوشن کیا۔ اپنی بہن پر ہوئے اس شوشن کے جواب میں یعقوب کے بیٹوں نے شکیم واسیوں کو یہ کہہ کر برگلایا کہ اگر ان کا ختنہ کیا جائے گا تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جب شکیم واسی ختنہ کے دوارا پیڑت تھے تو یعقوب کے بیٹوں شمعون اور لیوی نے ان پر حملہ کر دیا اور ان سبھی کی ہتیا کر دی۔ اس کے بعد یعقوب نے ڈر ویکت کیا کہ کنانی لوگ بدلہ لینے اور اس کے پریوار کو نشٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ یعقوب کے بیٹوں نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے صحیح کام کیا تھا۔ اتپتی ادھیائے 49 پد 5-7 میں شیمون اور لیوی کے بارے میں یعقوب کے انتم شبد کچھ اور ہی سنکیت دیتے ہیں۔ دوسرے ورتانت میں یعقوب اتپتی ادھیائے 35 پد 1-15 میں بیتیل میں کافی ناٹکیہ ڈھنگ سے پرمیشور سے ایک آشواسن کو پراپت کرتا ہے۔ ادھیائے 35 پد 2-4 میں بیتیل میں ایک ویدی کا نرمان کرنے کے لیے یعقوب سوئم کو اور اپنے پورے پریوار کو پوتر کرتا ہے۔ نتیجتن پرمیشور کا کرودھ کنانیوں پر پڑتا ہے، جس کے کارن انہوں نے یعقوب کا پیچھا نہیں کیا۔ پھر جب یعقوب نے بیتیل میں ویدی بنائی تو پرمیشور نے اس سے بات کی اور اسے آشواسن دیا کہ وہ اپنے پتا کا اتراधिकारी ہوگا۔ ہم اسے وشیش روپ سے ادھیائے 35 پد 10-12 میں دیکھتے ہیں، جہاں ادھیائے 26 پد 3-4 اسحاق کے وشے میں پرمیشور کے وچن اس کے پہلے بولے وچنوں کے سمانانتر ہی ہیں۔ یعقوب دوارا اس آشیش کے لیے دھنیواد دیے جانے کے ساتھ یہ ورتانت ختم ہوتا ہے۔ اور بہت کچھ دوسرے بھاگ کے جیسے ہم ان ادھیایوں میں ابراہم اور یعقوب کے بیچ کئی سمانتائیں دیکھتے ہیں۔ اتپتی ادھیائے 33 پد 20 میں یعقوب شکیم میں بہت کچھ جیسے ابراہم نے اس سے پہلے اتپتی ادھیائے 12 پد 7 میں کیا تھا، یہوہ کے لیے ایک ویدی کی استھاپنا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ادھیائے 35 پد 6-7 میں یعقوب شکیم سے بیتیل کو جاتا ہے، اور وہاں بہت کچھ جیسے ابراہم نے اتپتی ادھیائے 12 پد 8 میں کیا تھا، ایک ویدی کا نرمان کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے بھاگ میں ہے، ابراہم کے جیون کے ساتھ یہ سکاراتمک سمبندھ بتاتے ہیں کہ کنانیوں کے ساتھ یعقوب کے سنگھرش کو پرمیشور نے سویکرتی دی تھی۔ اب آئیے تیسرے اور پانچویں بھاگوں کی اور بڑھتے ہیں، جو یعقوب اور عیساو کے الگاو کے سمیوں کے بارے میں چرچا کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں دو وبھن سمیوں پر دھیان کیندرت کرتی ہیں، جب بھائیوں نے اپنے راستے الگ لیے تھے۔ تیسرا بھاگ ادھیائے 26 پد 34 سے ادھیائے 28 پد 22 میں یعقوب اور عیساو کی شترتا پورن الگاو کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور پانچواں بھاگ اتپتی ادھیائے 32 پد 1 سے ادھیائے 33 پد 17 میں یعقوب اور عیساو کے شانتیپورن الگاو کے بارے میں ورنن کرتا ہے۔ آئیے یعقوب اور عیساو کی شترتا پورن الگاو پر درشٹی ڈالتے ہیں۔ یہ بھاگ چار کہانیوں پر دھیان کیندرت کرتا ہے، جو باری باری سے کبھی یعقوب تو کبھی عیساو کے دوارا ان گھٹناؤں سے جڑی نیتک جٹلتاؤں کو پردرشت کرتی ہے۔ سب سے پہلے ادھیائے 26 پد 34 ایک سنکشپت رپورٹ دیتا ہے کہ عیساو اپنے ماتا پتا کی اچھاؤں کے وپریت ہتی پتنیوں کو بیاہ لینے کے دوارا خود کو لجت کرتا ہے۔ دوسرا ادھیائے 27 پد 1 سے ادھیائے 28 پد 5 میں ہم ایک لمبے ورتانت کو پڑھتے ہیں کہ کیسے یعقوب کے دھوکے نے اسحاق کے آشیرواد کو سرکشت کیا تھا۔ اس پرسدھ کہانی میں یعقوب نے اپنے پتا اسحاق کو دھوکہ دے کر عیساو کے لیے جو آشیشیں اس نے رکھی تھیں اسے حاصل کیا تھا۔ یہ جاننے پر کہ کیا ہوا تھا، عیساو اتنا کرودھت ہو گیا کہ ربکا کو یعقوب کے جیون کا ڈر ستانے لگا۔ اس نے یعقوب کو پدن رام بھیجنے کے لیے اسحاق کو آشوست کیا تھا، جہاں یعقوب اپنے رشتے داروں کے بیچ سے ایک پتنی کو ڈھونڈ سکے گا۔ تیسرا، عیساو کے موسیٰ کے شروتا بہت ادھک سہانوبھوتی ناپن پہ، اس لیے موسیٰ نے ادھیائے 28 پد 6-9 میں بتایا کہ عیساو نے اپنے ماتا پتا کی آگیاؤں کو نہ مانتے ہوئے اشمائیلی استریوں کو پتنی بنا لیا تھا۔ چوتھا اور انتم بھاگ، ادھیائے 28 پد 10 سے 22 میں، بیتیل میں ایک سوپن کے مادھیم سے پرمیشور نے یعقوب کو ملنے والی آشیشوں کے بارے میں بتا کر اس بات کے پشٹی کرتا ہے کہ اسحاق کے وارث کے روپ میں اس نے یعقوب کو ہی چنا ہے۔ تیسرے بھاگ کی کتھا، جس میں یعقوب اور عیساو کی شترتا پورن الگاؤ کا ورنن ہے، یعقوب کے جیون کا پانچواں بھاگ، ادھیائے 32 پد 1 سے ادھیائے 33 پد 17، اس کے وپریت بھائیوں کے شانتی پورن ریتی سے الگ ہونے کی رپورٹ دیتا ہے۔ اس بھاگ میں دو ورتانت شامل ہیں جو باریکی سے جڑے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ادھیائے 32 پد 1 سے 32 میں عیساو کے لیے یعقوب کی تیاری کو دیکھتے ہیں۔ ان کی شترتا پورن الگاؤ کے برسوں بعد یعقوب نے اپنے آگے دوتوں اور اپہاروں کو بھیج کر عیساو سے ملنے کی تیاری کی۔ ہوشے ادھیائے 12 پد 4 کے انوسار، عیساو سے ملنے سے پہلی والی رات کو یعقوب کو دین بنایا گیا تھا جب اس نے ایک سورگدوت کے ساتھ کشتی لڑی اور پرمیشور کے آشیرواد کو پراپت کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرتیجیا ربکا سے پہلے ہی کری گئی تھی کہ یعقوب وہ ویکتی ہوگا جو آشیشوں کو پراپت کرے گا، لیکن جس طرح سے یعقوب نے آشیشوں کو پراپت کیا، اس نے اپنے پتا کو دھوکہ دیا اور جب اس سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا، میرا نام عیساو ہے، تیرا جیٹھا پتر۔ اس نے جھوٹ بولا، لیکن پرمیشور نے اسے آشیش دی۔ پرمیشور اسے بڑھاتا ہے، اسے اتنے بچے دیتا ہے کہ ابراہم کو دی گئی پرتیجیا پوری ہونے لگی ہے۔ جس طرح سے تارے ہیں ویسے ہی تیرے ونشج ہوں گے۔ اور اب جب وہ پرتیجیا کے ہوئے دیش میں واپس لوٹ رہا ہے تو اسے اپنے اتیت تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس بار عیساو سے ملنے سے پہلے والی رات کو وہ ایک سورگدوت کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اور اس بار وہ سچ بولتا ہے، وہ کہتا ہے، میرا نام یعقوب ہے۔ اور اسے ایک نیا نام دیا جاتا ہے، اسرائیل۔ ادھیائے 33 پد 1 سے 17 میں دوسرا ورتانت عیساو کے ساتھ یعقوب کے میل ملاپ کی رپورٹ دیتا ہے۔ اس بھاگ میں بھائی ملتے ہیں اور پھر شانتی پورن شرطوں پر الگ ہوتے ہیں۔ اس بھاگ اور اس کے سمانانتر وچنوں کے بیچ ورودھاباس کا ہونا اسپشٹ ظاہر ہے۔ یعقوب اب دھوکے باز نہیں بلکہ ایماندار اور دین ویکتی تھا۔ عیساو نے اب بدلہ نہیں لیا لیکن معاف کر دیا۔ انت میں جڑواں بھائیوں کے بیچ پہلے والی شترتا کا سمادھان ہو جاتا ہے اور وہ شانتی سے اپنے الگ الگ مارگوں میں چلے جاتے ہیں۔ عیساو کے کہانی سے غائب ہوتے ہی اس بھاگ کا انت ہوتا ہے۔ پھر ادھیائے 34 میں کنانی لوگ اور ایک نئی بھوگولک سیٹنگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں لابان کے ساتھ یعقوب کے سمے کے چوتھے نرنائک بھاگ، اتپتی ادھیائے 29 پد 1 سے ادھیائے 31 پد 55 میں لاتے ہیں۔ لابان کے ساتھ یعقوب کا سمے پانچ مکھ بھاگوں میں وبھاجت ہوتا ہے۔ یہ ادھیائے 29 پد 1 سے 14 میں پدن رام میں یعقوب کے آگمن کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم ادھیائے 29 پد 14 سے 30 میں یعقوب کو دیے گئے لابان کے دھوکے کے بارے میں پڑھتے ہیں جب اس نے یعقوب کو اپنی بیٹیاں شادی میں دی تھیں۔ یعقوب کی شادی کے بعد ادھیائے 29 پد 31 سے ادھیائے 30 پد 34 میں ہم یعقوب کے بچوں کے جنم کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اسرائیل کے جن جاتیے کل پتا تھے۔ پھر لابان کے پہلے والے دھوکے کو سنتلت کرنے کے لیے ادھیائے 30 پد 25 سے 43 میں موسا نے یعقوب دوارا لابان کو دیے گئے دھوکے کے بارے میں بتایا جب اس نے اپنی کئی ورشوں کے لیے مزدوری کی مانگ کی۔ انتتہ ادھیائے 31 پد 1 سے 55 میں ہم پدن رام سے یعقوب کی ودائی کے بارے میں پڑھتے ہیں جس میں لابان کے ساتھ بنائی گئی شانتی کی ایک واچا شامل ہے۔ یہ نرنائک ادھیائے دھوکے اور سنگھرش کی وویدھتا کی چرچا کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے وہ یعقوب میں ایک کرانتیکاری پریورتن کو لاتے ہیں۔ جب ہم اتپتی ادھیائے 25 سے 37 میں یعقوب کی کتھا کو دیکھتے ہیں، ہم پریورتنوں کی ایک الیکھنیے شرنکھلا کو پاتے ہیں جو یعقوب کے جیون میں ہوئی۔ جب وہ ایک دھوکے باز کے روپ میں شروع کرتا ہے تو اس کے پاس پرمیشور سے ادبھت انگرہکاری پرکاشن ہوتا ہے جس میں پرمیشور اس دھوکے کا الیکھ نہیں کرتا جسے یعقوب دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بجائے وہ اس کے لیے ابراہم کی سبھی پرتیگیاؤں کو پھر سے دہراتا ہے۔ اور جب یعقوب پرمیشور کے ساتھ سودا کرتا ہے تو وہ ایک سوداگر بن جاتا ہے۔ یدی پرمیشور ان پرتیگیاؤں کو پورا کرے گا تو وہ اسے اپنا حصہ دے گا، لیکن یہ کیسا سودا تھا؟ کیونکہ پرمیشور نے اپنی پرتیگیاؤں کو تب پورا کیا جب لابان کے روپ میں یعقوب ایسے ویکتی سے ملتا ہے جو اس سے زیادہ دھوکے باز تھا۔ اور جب یعقوب اپنے جیون میں پرمیشور کی آشیشوں کا انوبھو کرتا ہے تو یہ بہت اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ اب وہ پرمیشور پر ادھک سے ادھک بھروسہ کرنے کو تیار ہے، کم سے کم نیونتم معنوں میں۔ اس لیے جب پرمیشور اسے گھر لوٹنے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انت میں ایک دھوکے باز، ایک سوداگر ہار جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ اس کا بھائی کئی سارے سشستر پرشوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور پھر وہ ہارا ہوا چھڑایا جاتا ہے جب پرمیشور آتا ہے اور یعقوب کہتا ہے، یہ تیرا آشیرواد ہے جس کی مجھ کو ضرورت ہے، نہ کہ میرے پتا کے نہ عیساو کے، یہ تیرا ہے۔ اور انتتہ پھر اس طرح سے اسے ایسی استھتی میں لایا جاتا ہے جہاں وہ پرمیشور پر بھروسہ رکھنے کو تیار اور یوگیہ ہے، اور اب اسے چھل کپٹ والا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو سب کام کو فائدہ اٹھانے کے لیے کرتا ہے۔ کل پتا یعقوب پر اپنے پاٹھ میں اس بندو تک ہم نے اتپتی کی پستک میں یعقوب کے جیون کی سنرچنا اور سامگری کا پتہ لگایا ہے۔ اب ہمیں اپنے دوسرے مکھیہ وشے کی اور بڑھنا چاہیے، ارتھات ان ادھیایوں میں دکھائی دینے والے پرمکھ وشے۔ درباگیہ سے مسیح کے انویائی اکثر ایسے دکھاتے ہیں جیسے کہ یعقوب کی کہانی کو مول روپ سے ویکتیگت وشواسیوں کے لیے سیدھے ان کے نجی جیونوں میں لاگو کرنے ہیتو لکھا گیا تھا۔ بے شک یہ بتانے کے لیے کہ ویکتی کو کیسے رہنا چاہیے اتپتی کے اس بھاگ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ اتپتی اس امید کے ساتھ نہیں لکھی گئی تھی کہ اوسط وشواسی ویکتی اسے پڑھ سکے گا۔ کیول پراچین اسرائیل کے اگووں کے پاس پوتر شاستروں تک سیدھی پہنچ ہوتی تھی۔ تو یعقوب کے جیون کو مکھیہ روپ سے سمپورن اسرائیل دیش سے سمبندھت معاملوں کو سمبودھت کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ پرمیشور نے پرتیجیا کیے ہوئے دیش میں اپنا راجیہ بنانے کے لیے ایک مشن کے روپ میں اسرائیل کی استھاپنا کی تھی، اور وہاں سے انہیں پرتھوی کی چھوڑ تک اس کے راجیہ کو پھیلانا تھا۔ اور راجیہ نرمان کا یہ مشن پراچین اسرائیل کے لیے اور آپ کے اور میرے لیے جو آج مسیح کے راجیہ میں رہتے ہیں، یعقوب کے جیون کے پرمکھ وشیوں کی پہچان کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ابراہم کے جیون پر ہمارے پاٹھوں میں ہم نے دیکھا कि मूसा ने चार मुख्य विषयों पर जोर दिया था। अब्राहम के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के प्रति अब्राहम की विश्वास योग्यता, अब्राहम के लिए परमेश्वर की आशीषें और अब्राहम के माध्यम से दूसरों के लिए परमेश्वर की आशीषें। ठीक यही विषय फिर से याकूब के जीवन में दिखाई देते हैं। इस कारण से हम विचार करेंगे कि याकूब के जीवन की कहानी इन चार मुख्य विषयों पर कैसे जोर देती है। सबसे पहले हम इसराइल के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की चर्चा करेंगे। दूसरा, परमेश्वर के प्रति इसराइल की विश्वास योग्यता की जरूरत। तीसरा, इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीषें। और चौथा, इन अध्यायों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसराइल के माध्यम से दूसरों को परमेश्वर की आशीषें। आइए उन कुछ तरीकों के साथ शुरू करते हैं जिनमें याकूब की कहानी इसराइल के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर ध्यान केंद्रित करती है। हम दो तरीकों में इसराइल के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का पता लगाएंगे। एक ओर हम देखेंगे कि कैसे यह विषय मूसा के वास्तविक अर्थ का ध्यान केंद्रण था, कैसे वह अपने प्राचीन इसराइली श्रोताओं को प्रभावित करना चाहता था। दूसरी ओर हम उन तरीकों पर ध्यान देंगे जिनमें ईश्वरीय अनुग्रह के इस विषय को उत्पत्ति के इस भाग के लिए हमारे वर्तमान प्रासंगिकता को प्रभावित करना चाहिए। आइए मूसा के वास्तविक अर्थ को पहले देखते हैं। सामान्य शब्दों में इसराइल के लोगों को उनके अपने जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखाने के लिए मूसा ने याकूब के जीवन में तीन तरीकों से ईश्वरीय अनुग्रह पर जोर दिया था। सबसे पहले मूसा ने लिखा कि कैसे परमेश्वर ने इससे पहले कि याकूब का जन्म हुआ उसे अतीत वाला अनुग्रह दिखाया था। याकूब की कहानी का प्रारंभिक वृत्तांत इस विषय पर ध्यान आकर्षित करता है। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 23 को फिर से सुनिए, जहां परमेश्वर ने रिबका से कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। रोमियों अध्याय 9 पद 11 से 12 में प्रेरित पौलुस ने टिप्पणी की कि इससे पहले कि वह कुछ भी सही या गलत करता, याकूब ने परमेश्वर की कृपा को प्राप्त किया था। ठीक इसी तरह इसराइल के गोत्रों के लिए भी, जो प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर मूसा के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर का अनुग्रह अतीत में परमेश्वर की कृपा पर आधारित था। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 7 से 8 में मूसा ने इसे इस तरह कहा, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। दूसरे स्थान पर मूसा ने याकूब के जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह रहने वाले अनुग्रह की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है जो निरंतर प्रकट होता रहता है। इसने इसराइलियों को सिखाया कि उन्हें अपने जीवनों में परमेश्वर के निरंतर प्रकट होने वाले अनुग्रह की कितनी आवश्यकता थी। यह मुद्दा सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 25 पद 24 से 26 में याकूब के जन्म की कहानी में प्रकट होता है। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 26 को सुनिए, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि जब वे पैदा हो रहे थे तो वह एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। इब्रानी में याकूब नाम याकूब एक ही स्रोत से निकला है, जिस शब्द का अनुवाद यहाँ एड़ी या इब्रानी में अकीब है। परिणाम स्वरूप याकूब के नाम का अर्थ था वह एड़ी पकड़ता, इब्रानी में याकीब है। लेकिन इस मामले में उसके नाम का अर्थ था उलटना और धोखा, क्योंकि याकूब ने बहुत जल्दी ही अपने जन्म के दिन से ही पहलौठे का पद प्राप्त करने की कोशिश की थी। हम यह भी कह सकते हैं कि याकूब के नाम का अर्थ चालबाज जैसा था। यह उत्पत्ति अध्याय 27 पद 36 में एसाव की प्रतिक्रिया को समझाता है, जब याकूब ने इसहाक से एसाव की आशीषों को धोखे से ले लिया था। एसाव ने कहा, क्या नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे दो बार अड़ंगा मारा, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। याकूब का नाम उसके कामों के बिल्कुल अनुरूप है, और यहां यह साफ कर देते हैं कि उसे अपने जीवन के हर एक दिन में परमेश्वर के निरंतर प्रकट होने वाले अनुग्रह की जरूरत है। मूसा अक्सर परमेश्वर के इसी अनुग्रह की ओर ध्यान आकर्षित करता था, जो उसके मूल श्रोताओं के लिए विशेष तौर से उपयुक्त थे। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 26 पद 26 से 33 में परमेश्वर ने याकूब के पिता इसहाक को पलिश्तियों के बीच सुरक्षा देने के द्वारा दया दिखाई थी। जब मूसा ने इन अध्यायों को लिखा तो इस बात पर जोर डाला कि उसके इसराइली श्रोताओं को भी पलिश्तियों से अपनी सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी। इसके अलावा अध्याय 34 पद 1 से 31 में परमेश्वर ने अनुग्रहकारिता में कनानियों पर याकूब को जीत दी थी। इस उदाहरण के द्वारा मूसा के मूल श्रोताओं ने सीखा कि उन्हें अपने दिनों में कनानियों पर जीत पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की कितनी जरूरत थी। तीसरे स्थान पर याकूब की कहानी परमेश्वर के भविष्य में प्रकट होने वाले अनुग्रह पर भी केंद्रित है। एक बार फिर हम इस विषय को पहले मूसा की कहानी के आरंभिक वृत्तांत में देखते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, उत्पत्ति अध्याय 25 पद 23 में याकूब के जन्म से पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। यह प्रतिज्ञा संकेत देती थी कि इसराइली लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश में इतनी अच्छी तरह से स्थापित हो जाएंगे कि वे अपने शासन का और इस तरह परमेश्वर के शासन का एसाव के वंशजों के देश पर भी विस्तार करेंगे। और भविष्य में होने वाले अनुग्रह की यह प्रतिज्ञा विशेष रूप से मूसा के मूल श्रोताओं के लिए, जब वे अपने ही दिन में एदोम वासियों के साथ संबंध या लेन देन करते थे, प्रासंगिक थी। और परमेश्वर ने याकूब के जीवन की कहानी में भविष्य में प्रकट होने वाले अनुग्रह से जुड़ी कई अन्य प्रतिज्ञाओं को दिया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 28 पद 10 से 22 में बेतेल में याकूब के सपने में परमेश्वर ने याकूब को भविष्य के कई अनुग्रह के बारे में आश्वस्त किया था, और बाद में उसने अध्याय 35 पद 11 से 12 में उन्हीं सब अनुग्रह की प्रतिज्ञाओं की फिर से पुष्टि की थी, जब बेतेल पर याकूब ने परमेश्वर की आराधना किया। याकूब के लिए भविष्य में होने वाले अनुग्रह की इन प्रतिज्ञाओं ने मूसा के श्रोताओं को उस उज्ज्वल भविष्य को दिखाया जिसे परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया था, जब वे कनान पर जीत हासिल करने और उसमें बसने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यह समझने के लिए कि याकूब की कहानियां कैसे इस बात पर जोर देती हैं कि प्रतिज्ञा किए हुए देश पर इसराइल का अधिकार है, हमें कम से कम दो अलग अलग बातों को याद रखना होगा। एक यह कि ये कहानियां मुख्य रूप से याकूब और एसाव के बीच का विरोधाभास के बारे में हैं, जैसा कि यह था अब्राहम की प्रतिज्ञाओं के न्यायोचित उत्तराधिकारी के रूप में, ऐसे समूह जो प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे, और याकूब और एसाव की कहानियां उन दोनों के बीच का विरोधाभास बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि एसाव दक्षिण में एदोम वासियों की ओर चला गया और परमेश्वर ने उसे वह देश दिया, ऐसा स्थान जहां परमेश्वर ने उसे स्थापित किया, और याकूब इसके विपरीत प्रतिज्ञा किए हुए देश के लिए अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा का न्यायोचित उत्तराधिकारी ठहरा। लेकिन आप इसे लाबान की कहानी में भी इसे पा सकते हैं, खासतौर पर जब याकूब उस स्थान को छोड़ता है। ये उत्तरी पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, लेकिन वह वहां हमेशा के लिए नहीं रुकता, पर केवल थोड़े समय के लिए। लेकिन याकूब एसाव और याकूब और लाबान के बीच सिर्फ इन विषमताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि जब याकूब प्रतिज्ञा किया हुआ देश छोड़कर जा रहा है, अपने पिता को धोखा देने, अपने भाई को धोखा देने के बाद, अब वह प्रतिज्ञा किए हुए देश को छोड़ रहा है। 28वें अध्याय में बेतेल पर उसे वह प्रसिद्ध स्वप्न आता है जहां वह परमेश्वर को पाता है, और स्वर्गदूत उसके पास आ रहे हैं, और फिर याकूब कहता है, क्या तू मुझे विश्वास दिला सकता है कि मैं इस देश में वापस लौटने जा रहा हूं? और परमेश्वर उसे विश्वास दिलाता है कि वह वैसा ही करेगा। और फिर अध्याय 35 में आपको वह घटना स्मरण होगी जहां परमेश्वर कहता है, बेतेल को जा, एक वेदी बना, उस जगह पर एक वेदी बना जहां मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे वापस ले आऊंगा। और बेतेल, जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए देश में है। और याकूब के जीवन में ये दोनों घटनाएं इस विचार पर सकारात्मकता रीति से जोर देते हैं कि यही वह देश है जिसे परमेश्वर ने याकूब को उसके सभी अवगुणों के बावजूद दिया था, इसके बावजूद कि उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, यहां तक कि लाबान के देश में ऐसे काम किए जो संदिग्ध थे। इन सब के बावजूद परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के रूप में याकूब को चुना जो उस देश का उत्तराधिकारी होगा, जिसकी प्रतिज्ञा उसके पूर्वज अब्राहम से की गई थी। अब जबकि वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखकर हमने इसराइल के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को देख लिया है, आइए उन कुछ तरीकों पर ध्यान करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को याकूब की कहानी के द्वारा वर्तमान में लागू किया जाना चाहिए। बेशक मसीह के अनुयायियों के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवनों में लागू करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम मसीह के राज्य के आरंभ, पूरी कलीसियाई इतिहास में उसके राज्य की निरंतरता और महिमा में उसकी वापसी पर राज्य की परिपूर्णता के संदर्भ में विचार करेंगे। मसीह के राज्य के ये तीन चरण उन प्रमुख तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नया नियम मसीह के अनुयायियों को अपने जीवन में अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के परमेश्वर के अनुग्रह को खोजना सिखाता है। पहले स्थान पर मसीह के अनुयायियों के रूप में जब हम याकूब के जीवन में अतीत काल के अनुग्रह के प्रदर्शन को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर ने मसीह में होकर अतीत में भी अपने अनुग्रह को विशेष रूप में उसके राज्य के आरंभ में प्रकट किया था सिर्फ हमारे लिए। मसीह का पहला आगमन अनुग्रह के लंबे इतिहास के अंत में खड़ा है, जो कि पूरे पुराने नियम में पाया जाता है। और जैसे कि रोमियो 5:20 जैसे पद संकेत देते हैं कि परमेश्वर ने मसीह के पहले आगमन में पहले से कहीं अधिक अनुग्रह और दया दिखाई थी, जैसा कि पौलुस ने लिखा है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। दूसरे स्थान पर याकूब के जीवन में परमेश्वर का निरंतर चलते रहने वाला अनुग्रह हमें याद दिलाता है कि हम भी मसीह के राज्य की निरंतरता में चली आ रही उसकी दया को खोजें एवं उस पर निर्भर रहें। जैसा कि इब्रानियों अध्याय 4:16 जैसे पद हमें बताते हैं, मसीह के अनुयायी परमेश्वर के अनुग्रह के निकट हियाव बांधकर चलें। और हम देखेंगे कि जरूरत के समय यही निरंतर बना हुआ अनुग्रह हमारी मदद करेगा। और तीसरा, जब हम याकूब के लिए परमेश्वर के आश्वासनों को देखते हैं कि वह भविष्य में भी अनुग्रह करेगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि मसीह के राज्य की परिपूर्णता के समय भविष्य में होने वाले परमेश्वर के इसी अनुग्रह को वह हमारे लिए भी प्रकट करेगा। बहुत कुछ वैसा ही जैसे कि मूसा के मूल श्रोताओं ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में परमेश्वर के प्रकट होने वाले अनुग्रह के बारे में सुना था। मसीह के अनुयायी नई सृष्टि में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखने की अभिलाषा करते हैं। इफिसियों अध्याय 2:7 जैसे पद हमें याद दिलाते हैं कि मसीह की वापसी पर हम परमेश्वर के अनुग्रह के अतुलनीय धन का अनुभव करेंगे। अब जबकि हमने इसराइल के लिए परमेश्वर के अनुग्रह विषय का अध्ययन कर लिया है, तो आइए अब हम दूसरे प्रमुख विषय की ओर बढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर के प्रति इसराइल की विश्वास योग्यता की जरूरत। पुराना और नया नियम दोनों स्पष्ट करते हैं कि अनंत उद्धार पूरी तरह से केवल परमेश्वर के अनुग्रह से प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कार्यों के द्वारा उद्धार हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन पवित्र शास्त्र भी यह स्पष्ट करता है कि जब लोग परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें बदलना शुरू कर देता है और वे परमेश्वर द्वारा दिखाई गई अत्यंत दया के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। यह हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा का फल है। जब हम याकूब के जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के विषय को देखते हैं, तो हमें हमेशा इन बुनियादी बाइबलीय धर्म विज्ञान के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना चाहिए। यह देखने के लिए कि हमारा क्या तात्पर्य है, हम मूसा के मूल अर्थ के एक पहलू के रूप में परमेश्वर के लिए इसराइल की विश्वास योग्यता को देखेंगे और फिर इस विषय के वर्तमान प्रासंगिकता की ओर जाएंगे। आइए पहले मूसा के वास्तविक अर्थ को देखते हैं। सामान्य शब्दों में, मूसा ने अपने दिनों में अपने मूल श्रोताओं को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए याकूब द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित की वफादारी पर जोर दिया था। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण पेश करते हुए उसने दर्शाया कि परमेश्वर ने याकूब को अपने विश्वास योग्य दास के रूप में कैसे बदल दिया। याकूब की कहानी के शुरुआती भागों में कुलपिता याकूब को काफी हद तक नकारात्मक प्रकाश में चित्रित किया गया है। पवित्र शास्त्र याकूब के जन्म को अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए चित्रित करता है और इस प्रकार पहलौठेपन के अधिकार को हड़पने की कोशिश कर रहा है। अपने युवावस्था में हम पढ़ते हैं कि याकूब ने एसाव की भूख का लाभ उठाकर उसके पहलौठेपन का अधिकार ले लिया था। एसाव के लिए आरक्षित आशीर्वाद को पाने के लिए उसने अपने वृद्ध पिता को भी धोखा दिया। इस शुरुआती नकारात्मक चित्रण का एकमात्र अपवाद बेथेल में याकूब की वह प्रतिज्ञा है जहां उसने शपथ ली कि यदि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा तो यहोवा उसका परमेश्वर होगा। अब इस प्रतिज्ञा के बाद याकूब लाबान के साथ रहने को चला गया। जाहिर है कि बेतेल में परमेश्वर के लिए वफादारी का बीज जो याकूब के दिल में बोया गया वह लगातार बढ़ता ही गया होगा। अपने ससुर के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बावजूद जब याकूब लाबान के साथ अपना समय बिताने के बाद लौटता है तो वह एक नया मनुष्य बन जाता है। मूसा ने इस बदलाव को चार तरीकों से प्रकट किया है। सबसे पहले मूसा ने बताया कि याकूब ने एसाव की ओर पछतावा प्रकट किया। अध्याय 32 पद 4 से 5 में याकूब ने अपने नौकर को अपनी ओर से एसाव को मेरे प्रभु के रूप में संबोधित करने का निर्देश दिया। और जब याकूब स्वयं उत्पत्ति अध्याय 33 पद 8 में अंततः एसाव से मिला तो उसने उसे सीधे मेरे प्रभु कहकर संबोधित किया। दूसरा, याकूब ने परमेश्वर के प्रति पछतावा प्रकट किया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 32 पद 10 में याकूब ने परमेश्वर के आगे अंगीकार किया, मैं सब करुणा और सच्चाई जो तूने अपने दास को दिखाए एक के भी योग्य तो नहीं हूं। तीसरा, याकूब ने परमेश्वर से एक नया नाम प्राप्त किया। उत्पत्ति अध्याय 32 पद 22 से 32 में याकूब ने यब्बोक नदी के घाट पर एक स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ी। 27वें पद में याकूब ने मूलतः स्वर्गदूत के आगे स्वीकार करके कि उसका नाम याकूब था यह अंगीकार किया कि वह एक चालबाज रहा है। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 32 पद 28 में याकूब के अंगीकार के लिए स्वर्गदूत ने यह कहकर जवाब दिया, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। बाइबल में कई सारे अन्य नामों की तरह इसराइल नाम अपने इतिहास के कुछ बिंदु पर परमेश्वर के लिए एक प्रशंसा का नाम था, जिसका अर्थ था परमेश्वर युद्ध करता है या लड़ता है। यह इब्रानी क्रिया सारा से निकला है, जिसे पद 28 में तूने युद्ध किया के रूप में अनुवाद किया गया है। स्वर्गदूत ने समझाया कि यह नाम याकूब के लिए एक विशेष तरीके से लागू किया गया है, क्योंकि वह परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ था। इस दृश्य में परमेश्वर के साथ याकूब का संघर्ष एक वरदान के लिए की जा रही कुश्ती के रूप में दर्शाया गया है, और सभी संभावना में मनुष्यों के साथ याकूब के संघर्ष एसाव और लाबान के साथ उसके संघर्षों को संदर्भित करते हैं। याकूब के जीवन के संदर्भ में उसके नए नाम ने संकेत दिया कि वह एक नया मनुष्य था। चालबाज बने रहने के बजाय याकूब इसराइल बन गया था, वह जिसने युद्ध किया और प्रबल हुआ था। आपने उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब के नाम को स्वयं परमेश्वर द्वारा इसराइल में बदले जाने की दिलचस्प कहानी को पढ़ा। याकूब ने स्वर्गदूत के साथ मल्ल युद्ध किया था और उसने एहसास किया कि स्वर्गदूत परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। वह परमेश्वर का स्वर्गदूत था और वह महसूस करता है कि परमेश्वर के पास उसके लिए एक विशेष योजना थी। परमेश्वर ने उस पर ध्यान दिया था, उससे मिलने आया था। उसके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इस तरह उसे अपना नाम बदला हुआ मिला। प्राचीन इसराइल में हम जानते हैं कि लोग बच्चों के नाम नहीं रखते थे जब तक कि वे पैदा ना हो जाएं। वे उनका नाम पहले ही से नहीं रखते थे। वे नहीं कहते थे यदि लड़का हुआ तो हम उसे यह नाम देंगे, और अगर यह एक लड़की हुई तो हम उसे वह नाम देंगे। इसके बजाय वे क्या करते थे कि किसी तरह के संकेत के लिए इंतजार करते थे, किसी तरह का संकेत, किसी तरह का लक्षण। अब यह याकूब के साथ हुआ था जब वह पैदा हुआ था, क्योंकि जब वह गर्भ से बाहर आया तब वह अपने भाई एसाव की एड़ी को पकड़े हुए था। اس لیے اسے عبرانی میں وہ نام مل گیا یعقوب، جس کا مطلب ہے کہ ایڑی لگانے والا یا ایڑی کو پکڑنے والا یا ایڑی کے جیسا ویکتی، اور وہ اسے اپنے پورے جیون بھر لیتا پھرا۔ لیکن جب پرمیشور اس سے ملا تو وہ واسطو میں ایک نیا ویکتی تھا۔ جب پرمیشور نے یعقوب کو پکڑ لیا اور اس کے سامنے اپنے واستوک ادیشے کو پرکٹ کیا کہ وہ ایک راشٹر کا پتا ہوگا، اپنے پتا اسحاق یا اپنے دادا ابراہم سے بھی ادھک پرتیکش طریقے سے، ایک بہت ہی پرتیکش طریقے سے، اور اس لیے یعقوب سے اسرائیل بننے کے دوارا آیا وہ پریورتن واستو میں ایک سندر بات ہے، اور ہم اس میں پرمیشور کی بھومیکا کی سراہنا کرتے ہیں۔ اسرائیل کے راشٹر کے نکٹتم پتا کو اپنی سیوا کے لیے بلانے میں اور ان بچوں کو پیدا کرنے میں جنہیں وہ پرتھوی پر اپنے پہلے لوگوں کے روپ میں اپیوگ کرے گا۔ موسیٰ کے مول شروتاؤں کے لیے یعقوب کے نئے نام کے مہتو کو زیادہ سمجھنا مشکل ہوگا۔ اسرائیل ان 12 گوتروں کا راشٹریہ نام تھا جن کی اگوائی موسیٰ نے مصر سے پرتگیا کے ہوئے دیش تک کی تھی۔ جب انہوں نے پرمیشور کے نشٹھاوان سیوک کے روپ میں کل پتا کے نئے نام کے بارے میں سنا تو انہیں یاد دلایا گیا کہ اسرائیل ہونے کے ناطے انہیں ٹھیک یعقوب کی طرح سنگھرش کرنے اور پربل ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ لابان کے ساتھ اپنے سمے کے بعد یعقوب کا چوتھا سکاراتمک چترن تھا اس کی سچی اپاسنا جب وہ بیتیل لوٹا تھا۔ جس طرح اس نے اتپتی ادھیائے 28 پد 20 سے 21 میں بیتیل پر پرمیشور کے پرتی وشواسی بنے رہنے کی پرتیجا کی تھی، اسی طرح یعقوب نے اتپتی ادھیائے 35 پد 3 میں ایک ویدی بنائی اور بیتیل میں پوری ایمانداری سے یہوہ کی اپاسنا کی۔ یعقوب کے پریورتن کی موسیٰ کی کہانی میں اس کے مول شروتاؤں کے لیے دو مکھیہ شکشائیں تھیں۔ اس نے یعقوب کی نشٹھاہینتا کو اس لیے پیش کیا کیونکہ اس کے شروتاؤں کو ان کئی باتوں کا سامنا کرنے کی ضرورت تھی جن میں وہ پرمیشور کے خلاف نشٹھاہین رہے تھے، لیکن اس نے اپنے شروتاؤں کو اس کے دنوں میں یعقوب میں پائے جانے والے وشواس کا انوکرن کرنے کے لیے پروتساہت کیا، اور یعقوب کو پرمیشور کے وفادار سیوک کے روپ میں بھی پیش کیا تھا۔ اور جب موسیٰ کے مول شروتا پرتیجیا کیے ہوئے دیش میں جیون کی چنوتیوں کا سامنا کر رہے تھے تو جتنا زیادہ انہیں پرمیشور کے انوگرہ پر بھروسہ کرنے کی آوشکتا تھی، اتنا ہی انہیں پرمیشور کے پرتی نشٹھاوان سیوا کے لیے سوئم کو ارپن کرنے کی آوشکتا تھی۔ اب جبکہ ہم نے موسیٰ کے مول ارتھ کے سمبندھ میں پرمیشور کے پرتی اسرائیل کی وشواس یوگیتا کے وشے دیکھ لیا ہے، تو اب ہمیں اس وشے کو یعقوب کے جیون سے پراپت ہوئی شکشا، جسے ہم ورتمان میں اپنے جیون پر لاگو کر سکتے ہیں، کے روپ میں دیکھنا چاہیے۔ اپنے ادیشیوں کے لیے ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے کہ یعقوب کے جیون کے یہ آیام کیسے ہم پر بھی مسیح کے راجے کے آرمبھ، نرنترتا اور پریپورنتا کے سندربھ میں لاگو ہوتا ہے۔ ورتمان پراسنگکتا۔ پہلے استھان پر جب کبھی یعقوب کے جیون کا ورتانت ہمارے وچاروں کو پرمیشور کے پرتی وفادار بنے رہنے کی ہماری ذمہ داری کی اور ہمیں لے جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کیسے مسیح نے اپنے راجے کے آرمبھ میں سبھی دھارمکتا کو پورا کیا۔ عبرانیوں ادھیائے 4 پد 15 ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی پریکشا ہمارے جیسے ہی ہوئی تھی، لیکن اس نے کبھی پاپ نہیں کیا۔ واستو میں پرمیشور کی آگیاؤں کے پرتی مسیح اتنا وشواس یوگیہ تھا کہ وہ پرمیشور کے نیائے کے ادھین ہو کر سویچھا سے ان سب کے لیے کروس پر مر گیا جو اس پر وشواس کرتے ہیں، اور اس کی سدھ دھارمکتا اب ہم پر وشواس کے دوارا پرتیاروپت کی گئی ہے۔ اپنے راجیہ کے آرمبھ میں پرمیشور کے پرتی سوئم مسیح کی ویکتیگت وشواس یوگیتا हमें याकूब के जीवन के निर्देशों को मात्र नैतिक रूप में लागू करने से रोकती है। ऐसा करो, ऐसा मत करो। याकूब के जीवन के प्रत्येक नैतिक निहितार्थ को पहले हमारी ओर से मसीह के द्वारा पूरी की गई धार्मिकता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरे स्थान पर, जब हम याकूब की कहानी में वफादारी के विषय को देखते हैं, तो हम आज मसीह के प्रति अपनी सेवा को निष्ठा के साथ पूरी करने के लिए मार्गदर्शन पाते हैं। मसीह के राज्य की निरंतरता के दौरान याकूब का जीवन आज भी हमें परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी पर विचार करने की बुलाहट देता है। हमें इब्रानियों अध्याय 12 पद 1-2 जैसे पद हमें याकूब समेत उन सब लोगों के जो हमसे पहले रहे हैं विश्वास का अनुकरण करने को प्रोत्साहित करता है। और तीसरे स्थान पर, याकूब की कहानी का प्रत्येक पहलू जो मनुष्य की विश्वास योग्यता की आवश्यकता के विषय को छूता है, हमारे दिलों को परमेश्वर के राज्य की परिपूर्णता के समय मसीह के प्रति वफादारी दिखाने की तरफ लेकर जाना चाहिए। विश्वास योग्यता का विषय हमें याद दिलाता है कि हम जो मसीह का अनुसरण करते हैं एक दिन परमेश्वर के सिद्ध विश्वास योग्य सेवकों में बदल जाएंगे, जैसा कि 1 यूहन्ना अध्याय 3:2 जैसे पद सिखाते हैं, जब मसीह लौटेगा हम उसके समान होंगे। यह देखकर कि याकूब को परमेश्वर ने आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी, हम याकूब की कहानियों को आज अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन था जिसने प्रतिज्ञा की थी कि उसने याकूब से प्रेम किया था, फिर भी याकूब किसी भी तरह उन आशीषों को जिसे पहले ही देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कर दी थी प्राप्त करने में अपना अधिकांश जीवन बिताता है। इस तरह हम भी अक्सर याकूब के समान होते हैं। हम कभी कभी किसी भी कीमत पर जीवन में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वह चीज़ जिसे देने का वादा परमेश्वर ने पहले ही हमसे कर दिया है, वास्तव में वह हमें मसीह में पहले ही दे दिया गया है। इस बात को रोमियों अध्याय 8:32 से अच्छा शायद ही नए नियम में कोई पद बोलता होगा। यदि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा। मसीह के माध्यम से हम विशेष रूप से भजन अध्याय 46 के पदों को सुन सकते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। और यदि मैं एक लाइन जोड़ सकता, जान लो कि वह भला परमेश्वर है जिसका स्वभाव दयालु और झुकाव वाचा के द्वारा अपनाए गए अपने बच्चों की ओर रहता है। इसराइल के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के प्रति इसराइल की वफादारी के प्रमुख विषयों को देख लेने के बाद हमें उत्पत्ति के इस भाग में तीसरे प्रमुख विषय की ओर बढ़ना चाहिए, इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीषें। हम इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीषों की जांच उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने मूसा के अन्य विषयों का पता लगाया था। हम मूसा के वास्तविक अर्थ के संदर्भ में पहले सोचेंगे और फिर हम इस विषय के हमारे वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। आइए मूसा के वास्तविक अर्थ के साथ शुरू करते हैं। सामान्य शब्दों में, अपने लोगों के साथ परमेश्वर की वाचाओं में आज्ञाकारिता के लिए आशीषें और अनाज्ञाकारिता के लिए श्राप शामिल होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि याकूब ने अपनी अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा जीवन में कई नकारात्मक परिणामों का अनुभव किया था। उदाहरण के लिए, अपने भाई और पिता को धोखा देने के बाद याकूब को अपनी जान के लिए भागना पड़ा। उसने अपने ससुर लाबान के द्वारा भी कठिन समय का अनुभव किया था। लेकिन मूसा ने साफ तौर पर उन आशीषों पर ज्यादा जोर दिया जो परमेश्वर ने याकूब को दी थी, ताकि वह अपने मूल श्रोताओं को याद दिलाए कि परमेश्वर ने उन्हें भी कई आशीषों को दिया था। याकूब के जीवन में परमेश्वर की आशीषें मोटे तौर पर दो समूहों में बटी हैं, याकूब की अनाज्ञाकारिता के बावजूद आने वाली आशीषें और याकूब की आज्ञा मानने के परिणाम स्वरूप आने वाली आशीषें। एक ओर याकूब ने अपनी निष्ठाहीनता के बावजूद आशीषों को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 27 पद 27 से 29 में याकूब ने इसहाक के माध्यम से परमेश्वर की आशीष प्राप्त की थी, भले ही उसने वह इसहाक को धोखा देकर हासिल की हो। याकूब ने अध्याय 28 पद 13 से 15 में बेतेल में परमेश्वर की आशीषों को इस तथ्य के बावजूद कि वह एसाव से अपनी जान बचाकर भाग रहा था प्राप्त किया था। दूसरी ओर याकूब की कहानी के बाद के खंडों में परमेश्वर की आशीषें याकूब की वफादारी के परिणाम स्वरूप आती हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 29 पद 1 से अध्याय 31 पद 55 में परमेश्वर ने लाबान के माध्यम से याकूब को परिवार और धन दौलत की आशीषें दी थीं। याकूब द्वारा स्वयं को दीन करने के बाद उत्पत्ति अध्याय 32 पद 1 से अध्याय 33 पद 17 में परमेश्वर ने उसे एसाव के माध्यम से आशीषें दीं। इसी तरह उत्पत्ति अध्याय 33 पद 18 से अध्याय 34 पद 31 में उसके बेटों द्वारा कनानियों से संघर्ष करने के बाद याकूब ने शकेम में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया। जब कुलपिता याकूब ने स्वयं को परमेश्वर की उपासना के लिए समर्पित कर दिया, तब परमेश्वर ने अध्याय 35 पद 9 से 13 में बेतेल में याकूब को आशीष भी दी। मूसा जानता था कि जो इसराइली लोग उसके पीछे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर चल रहे हैं, उन्हें पलायन और विजय में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन और कई अन्य पदों में मूसा ने याकूब को मिलने वाली परमेश्वर की आशीषों पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि वह अपने मूल श्रोताओं को कृतज्ञ बनने के लिए प्रेरित करे और परमेश्वर की आशीषों को और बढ़कर पाने हेतु प्रोत्साहित करे। एक बार जब हम इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीषों के बारे में पढ़ते और उसके वास्तविक अर्थ को देखते हैं, तो वर्तमान प्रासंगिकता के लिए इन बातों के महत्व को समझना मुश्किल नहीं है। हमारी पहले की गई चर्चाओं के अनुसार एक बार फिर हम मसीह के राज्य के आरंभ, निरंतरता और परिपूर्णता के संदर्भ में बात करेंगे। राज्य के आरंभ के दौरान हमें सबसे पहले मसीह की ओर स्वयं अपने हृदयों को मोड़ना चाहिए। याकूब ने अपनी अनिष्ठा के बावजूद आशीषों को प्राप्त किया, पर यीशु जो पाप से अनजान था और पिता के प्रति वफादार था, उसने पृथ्वी पर अपने जीवन काल के दौरान बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया और उससे भी महान आशीषें उसको मिली जब वह स्वर्ग में चढ़ गया। यीशु की अपनी आशीषों के बारे में देखने वाली सबसे उत्कृष्ट बात इफिसियों अध्याय 1 पद 3 जैसे वचन हमें सिखाता है। मसीह के साथ एक होने के द्वारा हम यीशु की आशीषों में सहभागी हैं। इसके अलावा नया नियम सिखाता है कि मसीह अपने राज्य की निरंतरता के दौरान अपने लोगों पर आशीषों को बरसाता है, जैसा कि उसने याकूब के साथ किया था। परमेश्वर कभी कभी हमारी निष्ठाहीनता के बावजूद और अन्य समयों में हमारी निष्ठा के परिणाम स्वरूप हमें आशीष देता है। अब मसीह के अनुयायियों के लिए यह जीवन स्वयं को इनकार करने और दुख से भरा है, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 21 और 22 और इफिसियों अध्याय 1 पद 13 और 14 जैसे पद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की अद्भुत आशीषों के साथ हम में से प्रत्येक पर अपनी छाप लगाने की प्रतिज्ञा की है। आने वाले संसार में इससे भी अधिक विरासत की गारंटी के रूप में पवित्र आत्मा हमारे भीतर और हमारे बीच में रहता है। इसलिए जब भी हम उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब के लिए परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं तो हमें उन अथाह आशीषों को स्मरण दिलाया जाता है जिन्हें हम मसीह के राज्य की परिपूर्णता पर प्राप्त करेंगे। मत्ती अध्याय 25 पद 34 जैसे पद इतने स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि जब मसीह लौटेगा तो परमेश्वर सृष्टि की रचना से हमारे लिए तैयार किए गए राज्य में हमारा स्वागत करेगा। इसराइल के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के प्रति इसराइल की विश्वास योग्यता, इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीष के प्रमुख विषयों पर ध्यान देने के बाद आइए चौथे और मूसा के द्वारा लिखे गए याकूब के जीवन के वृत्तांत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख विषय की ओर बढ़ते हैं। इसराइल के माध्यम से जगत के अन्य लोगों के लिए परमेश्वर की आशीषें। पहले की तरह हम मूसा के वास्तविक अर्थ के संदर्भ में इसराइल के माध्यम से परमेश्वर की आशीषों के विषय का पता लगाएंगे और फिर विषय के वर्तमान प्रासंगिकता की ओर बढ़ेंगे। आइए मूसा के वास्तविक अर्थ को पहले देखते हैं। मूल दर्शकों के लिए इस विषय का क्या महत्व था, इस बात को समझने के लिए हमें इसराइल देश के पिता के रूप में अब्राहम को दिए गए परमेश्वर के विशेष आदेश को याद करने की आवश्यकता है। उत्पत्ति में अब्राहम की कहानी बताती है कि परमेश्वर ने इसराइल के लोगों की नियुक्ति की कि वे मानवता के मूल आदेश को पूरा करने में अगुवाई करें, उन्हें फलना फूलना और पृथ्वी को परमेश्वर के विश्वास योग्य स्वरूप से भरना था, और ऐसा उन्हें परमेश्वर की आशीषों को पृथ्वी भर में दूसरे लोगों तक फैलाने के द्वारा करना था, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 12 पद 2 से 3 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने अब्राहम को संसार के सभी राष्ट्र तक परमेश्वर के राज्य के आशीषों को फैलाने के लिए बुलाहट दी थी, लेकिन ध्यान दें कि भले ही परमेश्वर की आशीष पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगी लेकिन हर एक व्यक्ति को आशीषित नहीं किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग इसराइल के प्रयासों का तिरस्कार करेंगे और दूसरे उन्हें स्वीकार करेंगे, और परमेश्वर ने उसी के अनुसार दूसरों को आशीषित करने और श्राप देने की प्रतिज्ञा की। काफी दिलचस्प बात है कि आशीष और श्राप देने की इसी दोहरी प्रक्रिया को, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के सामने प्रकट किया था, उत्पत्ति अध्याय 27 पद 29 में याकूब के लिए भी इसे दोहराया गया, जब इसहाक ने याकूब को यह कहते हुए आशीष दिया, जो तुझे श्राप दें वे आप ही श्रापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। याकूब के जीवन के बारे में मूसा ने जो कुछ लिखा उसके ज्यादातर हिस्सों में यही दर्शाने का प्रयास किया कि किस तरह से कुलपिता ने अपने दिनों में विभिन्न लोगों के साथ संपर्क किया और उन पर परस्पर प्रभाव डाला था, क्योंकि यह सारे लोग मूसा के समय में आसपास रह रहे लोगों के ही पूर्वज थे जो उन दिनों में इसराइलियों के साथ संपर्क में आ रहे थे। ऐसा करने के द्वारा मूसा ने इसराइलियों को सिखाया कि उनके संपर्क में आने वाले ये या वो समूह से कैसा बर्ताव करें, क्या उन्हें युद्ध के लिए जाना चाहिए या उन्हें शांति स्थापित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, याकूब की कहानियां प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमाओं के अंदर बसे दो समूहों की चर्चा करती हैं। एक ओर अध्याय 33 पद 18 से अध्याय 35 पद 15 में छठवां भाग याकूब और कनानियों के बीच संघर्षों की रिपोर्ट देता है। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 16 में परमेश्वर ने यह साफ किया कि वह इसराइल को मिस्र से तब तक बाहर नहीं लाएगा जब तक एमोरियों का पाप, कनानियों के लिए दूसरा शब्द, पूरा नहीं हो जाता। राहब जैसे कुछ अपवादों के साथ मूसा के दिनों तक कनानियों ने प्रतिज्ञा किए गए देश को इतना अशुद्ध कर दिया था कि परमेश्वर ने इसराइल को उन्हें नाश करने की आज्ञा दी। तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मूसा ने याकूब द्वारा शकेम वासियों की हार और अन्य कनानियों से याकूब की रक्षा के बारे में लिखा। दूसरी ओर याकूब के जीवन का दूसरा भाग अध्याय 26 पद 1 से 31 में इसहाक और पलिश्तियों के बीच संघर्षों को बताता है। कनानियों के साथ याकूब के संघर्ष के विपरीत यह भाग पलिश्तियों के साथ इसहाक की शांति पर ध्यान केंद्रित करता है। हम यहोशू अध्याय 13 पद 1 से 5 में पढ़ते हैं कि पलिश्ती लोग उन देशों में रहते थे जिन्हें देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसराइल से की थी, लेकिन उनके नाम से संकेत मिलता है कि पलिश्ती लोग एक समुद्री मल्लाह लोग थे जो कप्तोर से आए थे। इस वजह से तुरंत ही वे कनानियों के खिलाफ परमेश्वर के न्याय के अधीन नहीं आए थे। इस नीति को उत्पत्ति अध्याय 21 पद 22 से 34 में अब्राहम और अध्याय 26 पद 26 से 33 में इसहाक के उदाहरणों द्वारा समर्थन मिला है। इन दोनों कुलपिता ने पलिश्तियों के साथ शांति संधियां बनाई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप पलिश्तियों के साथ शांति से रहने की कोशिश करने के द्वारा मूसा के दिनों में इसराइलियों ने अब्राहम और इसहाक का अनुकरण किया। इसके बाद ही जब पलिश्तियों ने बाद की पीढ़ियों के द्वारा इस संधि को तोड़ दिया था, तब इसराइल ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा। इन उदाहरणों के अलावा याकूब की कहानी उन लोगों से भी संबंधित है जो प्रतिज्ञा किए गए देश से बाहर रहते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 29 पद 1 से अध्याय 31 पद 55 में लाबान के साथ याकूब के बिताए समय का केंद्रीय भाग इसराइलियों के दूर के रिश्तेदारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पद्दन राम प्रतिज्ञा किए गए देश के थोड़ा उत्तर में रहते थे। याकूब के समय का लेख उस धोखे के खिलाफ चेतावनी देता है जो लाबान और उसके परिवार को चित्रित करता है, लेकिन उत्पत्ति अध्याय 31 पद 51 से 55 में पता चलता है कि याकूब और लाबान ने दोनों के बीच की भौगोलिक सीमा का सम्मान करने और एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखने की शपथ खाई थी। यह साफ करता है कि मूसा के बाद के इसराइलियों को उत्तरी सीमा पर अपने रिश्तेदारों के साथ शांति से रहना था और बाद में इसराइल को इस स्थान पर भी परमेश्वर के राज्य को फैलाना था। प्रतिज्ञा किए हुए देश में और उत्तरी सीमा पर रहने वाले लोगों से व्यावहारिक संबंध रखने के अलावा याकूब के जीवन की ज्यादातर कहानी उसके भाई एसाव के साथ होने वाले संपर्कों पर केंद्रित है। जैसा कि हमने देखा, उत्पत्ति अध्याय 25 पद 19 से 34 में भाइयों और राष्ट्रों के बीच संघर्ष की शुरुआत में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि याकूब और एसाव के संबंध एदोम वासियों के साथ इसराइलियों के संबंध का पूर्वाभास था जो सेईर में रहते थे, जो प्रतिज्ञा किए हुए देश की दक्षिणी सीमा में है। उत्पत्ति के मूल श्रोताओं के लिए एदोम विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की दक्षिणी सीमा के साथ साथ चले थे तो उन्हें एदोम वासियों की शत्रुता का सामना करना पड़ा था। परमेश्वर ने इसराइलियों को निर्देश दिया था कि वे इस क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ युद्ध करें, लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 2 पद 4 से 6 और गिनती अध्याय 20 पद 14 से 21 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने इसराइल को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे अपने रिश्तेदार एदोम वासियों के साथ नम्रतापूर्वक और शांति से रहें। याकूब की कहानी इसराइलियों को याद दिलाती थी कि याकूब ने परमेश्वर की आशीष को छल से प्राप्त किया था। यह इस बात को भी बताती थी कि याकूब ने एसाव के सामने स्वयं को दीन किया था, और इससे भी अधिक, याकूब की कहानियों ने याकूब और एसाव और उनके वंशजों के शांतिपूर्ण भौगोलिक विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया था। मूसा की कहानी के ये आयाम उसके पीछे चल रहे इसराइलियों को प्रत्यक्ष तौर पर बता रहे थे कि उन्हें एदोम वासियों के साथ कैसा व्यवहार करना था। यह बहुत बाद में हुआ कि जब एदोम वासियों ने इसराइल को परेशान किया और फिर इसराइल ने उनके साथ युद्ध किया। अब जबकि इसराइल के माध्यम से अन्य लोगों तक आने वाली परमेश्वर की आशीषों के वास्तविक अर्थ को देख लिया है, हमें इस विषय के वर्तमान प्रासंगिकता की ओर बढ़ना चाहिए। इस विषय के पास हमारे जीवनों के लिए कई निहितार्थ हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम मसीह के राज्य के तीन चरणों पर एक बार फिर से ध्यान देंगे। सबसे पहले, अपने राज्य के आरंभ में यीशु इसराइल का राजा होकर पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए परमेश्वर की आशीषों को लेकर आया। यूहन्ना अध्याय 12 पद 47 और 48 जैसे पद हमें बताते हैं कि अपने पहले आगमन में यीशु शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं की सेनाओं को हराने के लिए आया था, लेकिन वह पृथ्वी पर हर एक देश के लिए शांति का संदेश भी लाया था। यीशु और उसके प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने विरोध सहा, मगर उन्होंने धीरज के साथ सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ अंतिम दिन में परमेश्वर के न्याय दंड की चेतावनी भी दी जिन्होंने सुसमाचार का तिरस्कार कर दिया था। दूसरा, मसीह के राज्य की निरंतरता के दौरान कलीसिया की सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर की आशीषों का सभी देशों में फैलाना जारी है। मसीह उसके प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के उदाहरण का पालन करने से हम उन दुष्टात्माओं के खिलाफ लड़ते हैं जो देशों को धोखा देना जारी रखे हुए हैं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 20 जैसे पद बताते हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। हम पूरी दुनिया को परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप का संदेश पहुंचाते हैं, और साथ में हम अंतिम दिन पर परमेश्वर के न्याय की चेतावनी भी देते हैं। तीसरा, दूसरे लोगों के साथ याकूब के संपर्कों को हमें मसीह के राज्य की परिपूर्णता को ध्यान में रखकर लागू करना चाहिए। पुराने नियम के समय अक्सर जब परमेश्वर यह तय करता था कि अब न्याय दंड लाने का समय है, तब इसराइल की तरफ से अन्य लोगों को दी गई शांति के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता था। इसी तरह जब मसीह महिमा में लौटेगा, तब उन सभी राष्ट्रों से जिन्होंने मसीह और उसके राज्य का विरोध किया था, किसी भी प्रकार के शांति के प्रस्ताव को उनसे पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। उस समय दुष्ट लोग परमेश्वर के न्याय के अधीन होंगे, लेकिन जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 9 से 10 जैसे पद हमें बताते हैं, पृथ्वी के हर एक कोने से अनगिनत लोग जिन्होंने मसीह पर भरोसा किया है, वे परमेश्वर के विश्वव्यापी राज्य में प्रवेश करेंगे। इस पाठ के अंदर हमने इस बात की खोजबीन की कि किस तरह मूसा के द्वारा उत्पत्ति की पुस्तक में कुलपिता याकूब के जीवन को प्रस्तुत किया है। हमने देखा है कि कैसे मूसा ने अपने अभिलेख की संरचना और सामग्री को अच्छी तरह से एकीकृत किया ताकि याकूब का जीवन उन इसराइलियों के जीवनों को छू सके जो प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर उसके पीछे चल रहे थे। हमने यह भी देखा कि कैसे मूसा के मुख्य विषयों जैसे इसराइल के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के प्रति इसराइल की वफादारी, इसराइल के लिए परमेश्वर की आशीषें और इसराइल के माध्यम से परमेश्वर की आशीष ने न केवल मूसा के दिनों में इसराइल देश के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि हम मसीह के अनुयायियों का भी मार्गदर्शन करना आज भी जारी रखा है, विशेषकर उनका जो अपने दिनों में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। याकूब की कहानी मसीह पर भरोसा रखने वालों के लिए आशा की एक अद्भुत कहानी है। इसने पहले मूसा के मूल श्रोताओं को उनकी असफलताओं और सफलताओं का सामना करने में मदद की थी, और जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहे थे तब इसने अन्य लोगों के साथ हो रहे उनके संपर्कों का भी मार्गदर्शन किया था। यह आज भी आपका और मेरा मार्गदर्शन वैसे ही कर रहा है। याकूब के जीवन के द्वारा हमें फिर से यह आश्वासन मिलता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की करुणा की पहुंच से बाहर नहीं है, और उन लोगों के समान जो मसीह के द्वारा जोड़े गए हैं, हमारी कई असफलताओं के बावजूद हम याकूब से सीख सकते हैं कि जब तक मसीह महिमा में नहीं लौटता तब तक हमें पूरे विश्व में परमेश्वर के राज्य की आशीषों को कैसे फैलाना है।